प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के द्वारा हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन विस्तार पूर्वक करेंगे। इसमें हम सबसे पहले बाइबल की मार्गदर्शक रूपरेखा देखेंगे। पवित्र शास्त्र क्यों महत्वपूर्ण है और इसे एक अनोखी पुस्तक क्यों कहा गया है और इसे परमेश्वर के द्वारा दिया गया वचन क्यों कहा जाता है, इन बातों पर विचार करेंगे। साथ ही हम देखेंगे प्रकाशन, प्रेरणा, स्पष्टीकरण एवं व्याख्या का क्या अर्थ है तथा बाइबल और उसके प्रत्येक अध्याय का अध्ययन किस प्रकार किया जाना चाहिए, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।
प्रिय श्रोता, फिर से आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम बाइबल अध्ययन की रूपरेखा देख रहे हैं और इस रूपरेखा के अंतर्गत अभी तक हमने चार महत्वपूर्ण विषयों पर अध्ययन कर लिया है। पिछले बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में हमने पवित्र वचन पर मनन चिंतन करना, इस विषय को देखा था, लेकिन आज हम उसके आगे पांचवें रूपरेखा पर विचार करेंगे। इससे पहले कि हम अपने अध्ययन को आरंभ करें, आइए हम परमेश्वर से अध्ययन के लिए सहायता मांगे। तो आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर, हम आपका फिर से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए, जिसके द्वारा हम आपके जीवित और सामर्थी वचन को सीखते हैं। प्यारे परमेश्वर, आज हम बाइबल अध्ययन की रूपरेखा के 5वें विषय पर अध्ययन करना चाहते हैं। कृपया आप हम सबकी सहायता करें, हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि प्रत्येक श्रोता भाई बहन आपके आशीषों को प्राप्त कर सके। जो निराश, परेशान और बीमारी हालत में है, उन्हें भी आप अपनी शांति व चंगाई प्रदान कीजिए। हम यह प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, पिछले कार्यक्रम में हमने देखा कि बाइबल पढ़ने के पश्चात हमें उस वचन पर चिंतन व ध्यान करना चाहिए, और आज हम उसके अगले विषय पर विचार करेंगे कि इसके बाद हमें क्या करना चाहिए। तो हमारा आज का विषय है पवित्र शास्त्र के विषय, दूसरे लोगों ने जो लिखा है उसे भी पढ़ें। पवित्र शास्त्र के विषय, दूसरे लोगों ने जो लिखा है उसे भी पढ़ें। मैं जानता हूं कि इस नियम का पालन करने में खतरा है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो दूसरों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। वे अपने विचारों को नहीं रखते, परंतु लेखकों के विचारों को देखते और स्वीकार करते हैं कि उसने बाइबल के बारे में क्या लिखा है। इसके अलावा आज बाजार में बहुत सी पुस्तकें हैं जो परमेश्वर के वचन की गलत शिक्षा देती है। इसलिए मुझे और आपको बाइबल में लिखे गए वचन के आधार पर सभी पुस्तकों को जांचने की आवश्यकता है। चाहे जो भी हो, मुझे और आपको अच्छी बाइबल टीका या व्याख्या की पुस्तकों को अवश्य देखना चाहिए। प्रत्येक बाइबल पुस्तक की सूची के साथ मैं कुछ पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। व्याख्या या टीका की पुस्तकें, जिसे मैंने पढ़ा और इससे काफ़ी सहायता भी मिली है। दूसरों ने क्या कुछ कहा है उसे पढ़कर आपको भी बहुत लाभ होगा। वास्तव में जब आप उन पुस्तकों को पढ़ते हैं जो परमेश्वर की प्रेरणा में होकर लिखा गया है, तो आप उस मिठास को प्राप्त करते हैं और कई शताब्दी पूर्व की गई अध्ययन का आनंद लेते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की पुस्तकों के द्वारा अवश्य ही आपको और मुझको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि बाइबल की पुस्तकों में कुछ अद्भुत और गंभीर कार्य किए गए हैं। अर्थात बाइबल पर आधारित पुस्तकों को लिखने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता मांगी गई है। मित्रों, बाइबल की वचन को समझने व अच्छी अध्ययन प्राप्त करने के लिए कुछ सहायक पुस्तकों का होना अनिवार्य है। यहाँ पर मैं आपको कुछ पुस्तकों के बारे बताना चाहता हूँ जो आपके व्यक्तिगत बाइबल अध्ययन में सहायता प्रदान कर सकते हैं। बाइबल अध्ययन के लिए आपको एक बाइबल टीका या कमेंट्री और उसके साथ साथ एक शब्दानुक्रमणिका अर्थात कॉन्कॉर्डेंस की आवश्यकता है। इसके अलावा आपके पास एक अच्छा बाइबल शब्दकोश या डिक्शनरी भी होना चाहिए। यदि संभव है तो अंगर बाइबल शब्दकोश ही लीजिए, क्योंकि यह शब्दकोश बहुत ही अच्छा है। मित्रों, प्रत्येक बाइबल शिक्षक और सुसमाचार प्रचारक के पास पुस्तकों का एक संग्रह अवश्य होता है, जिसकी सहायता से वे अपना बाइबल अध्ययन करते हैं। वास्तव में उन्हें इसकी जरूरत पड़ती है। किसी ने पूछा कि क्या वह किसी के द्वारा लिखे गए संदेश को हूबहू कलीसिया में बता सकता है? इसका उत्तर है नहीं। आप कभी भी ऐसा करने का प्रयत्न ना करें जब तक कि आप उस लेखक को संबोधन नहीं करते हैं कि यह उस लेखक का संदेश है। अन्यथा आपको किसी भी अन्य लेखकों के लेखों को भी प्रयोग करने का अधिकार है। एक प्रचारक ने एक बार कहा कि उसके लिखे संदेश को कुछ लोग प्रयोग करते हैं और कभी कभी उसे संदेश के लिए मान्यता भी नहीं देते हैं, परंतु कभी कभी लेखक का नाम तक नहीं लिया जाता है। जहां तक मेरा मानना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह उसके चरित्र को उजागर कर देता है जो किसी दूसरे के संदेश को शब्दशः या जैसा का वैसा ही प्रयोग करता है और उस लेखक का नाम तक नहीं लेता। बाइबल प्रशिक्षण केंद्र के एक प्रोफेसर ने इस समस्या का भी हल ढूंढ निकाला है। जब किसी ने उससे पूछा कि यदि वह दूसरे लेखकों का उदाहरण देता है, तो उसने कहा कि आपको हर एक के चारागाह में चरना चाहिए, किंतु दूध अपना ही देना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि आप दूसरे लेखकों के लेखों को पढ़ें, परंतु आप उसे अपने विचार अनुसार प्रयोग करें या व्यक्त करें। आपको ऐसा करने का पूरा अधिकार है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें दूसरे बाइबल विद्वानों के परिश्रम और अध्ययन का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए जो उन्होंने परमेश्वर के वचन पर किया है। तो मित्रों, पांचवी रूपरेखा यहीं पर समाप्त होती है, इसलिए अब हम छठवीं रूपरेखा पर विचार करेंगे। छठवीं रूपरेखा है बाइबल के वचन का पालन करें। बाइबल के वचन का पालन करें। पवित्र बाइबल को समझने और उसके वचन का अध्ययन करने के लिए आज्ञाकारिता का होना अनिवार्य है, और इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण अब्राहम का जीवन है, जब परमेश्वर उसके सामने प्रकट हुआ और उससे कहा कि कसदियों के ऊर नगर को छोड़ दे। और उसके बाद दोबारा परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा के देश कनान में दर्शन दिया और उसे वहीं ठहरने को कहा, परंतु जब कनान देश में अकाल पड़ा तो वह मिश्र देश को चला गया। और इन दिनों में परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम से कोई बातचीत नहीं की, जब तक कि प्रभु के दास अब्राहम प्रतिज्ञा के देश कनान में वापस नहीं लौट आए। परमेश्वर ने उसे दोबारा दर्शन नहीं दिया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब्राहम में आज्ञाकारिता की कमी थी। जब तक अब्राहम ने परमेश्वर के वचन का पालन नहीं किया जिसे परमेश्वर ने उसे पहले दिया था, परमेश्वर उसे कोई नया सत्य बताने के लिए तैयार नहीं था। ऐसा हमारे साथ भी होता है, जब हम परमेश्वर के वचन का और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तब परमेश्वर हमारे सामने नए सत्य को उजागर करते हैं। यहाँ तक कि सुसमाचार जो हमारे प्राणों के उद्धार के लिए दिया गया है वह भी एक विशेष आज्ञा पालन के उद्देश्य से दिया गया है। अभी तक सुसमाचार पर सबसे बड़ा लिखित प्रमाण जो दिया गया है या लिखा गया है वह है रोमियो की पत्री, और प्रेरित पौलुस ने सुसमाचार की आज्ञाकारिता पर बल देते हुए रोम की कलीसिया को लिखा है, जिसे हम रोमियो की पत्री उसके एक अध्याय और पांच पद में पाते हैं। रोमियो की पत्री एक अध्याय और उसके पांच पद, वह इस प्रकार शुरू करता है, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के लिए सब गैर यहूदियों में विश्वास से आज्ञाकारिता उत्पन्न करे। रोमियो की पत्री के अंत में प्रेरित पौलुस पुनः इसी विषय को लिखते हैं जिसे हमें रोमियो 16 अध्याय और उसके 26 पद में पढ़ते हैं। रोमियो 16 अध्याय और उसके 26 पद, परंतु अब प्रकट हुआ है और अनंत परमेश्वर के आज्ञा अनुसार नबियों के शास्त्रों द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञाकारी बन जाएं। विश्वास से आज्ञाकारी बन जाएं, यह प्रेरित पौलुस की अंतिम बात है जो उसने रोमियो की पत्री में कहा है। इसके बीच में क्या है, वह हमारे सामने यह स्पष्ट करता है कि सुसमाचार क्या है। पहले खंड में उसका महान सिद्धांत और दूसरे खंड में उसके पालन करने के साथ खत्म करता है कि हमें क्या करना चाहिए। पौलुस सुसमाचार के अंदर आज्ञाकारिता की बातों को भी रखता है कि विश्वास से आज्ञाकारी बन जाएं। यहीं पर हमारे आदि माता और पिता आदम और हवा ने भूल की थी। हमारी आदि माता हवा ने केवल शैतान की बातों को सुना जो परमेश्वर का शत्रु था, परंतु उसने परमेश्वर की आज्ञा का भी उल्लंघन किया। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, और हमें इस बात को समझना चाहिए कि यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं तो परमेश्वर कोई भी सत्य हम पर प्रकट नहीं करेंगे। मित्रों, यदि हम परमेश्वर से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो पवित्र बाइबल पढ़ें और उसके वचन का पालन भी करें, अर्थात परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बने। आज्ञाकारिता इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इस संसार में एक विशाल जनसमूह ऐसा भी है जो मसीहत को मेरे और आपके जीवन के आधार पर मापता या तौलता है। दूसरे शब्दों में कहें कि लोग जीवन के आचरण को देखकर मसीहत का मापदंड बनाते हैं। इसके संबंध में कुआन ने बहुत अच्छा कहा है, सुसमाचार की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा मार्ग यह है कि हम सुसमाचार के योग्य जीवन व्यतीत करें। ऐसा करने के द्वारा ही हम प्रमाणित कर सकते हैं कि पवित्र बाइबल परमेश्वर का वचन है। फिलिपियों की कलीसिया में पौलुस प्रेरित ने कहा, जिसे हम फिलिपियों एक अध्याय उसके दो पद में पाते हैं, फिलिपियों एक अध्याय उसके दो पद, केवल इतना करो कि तुम्हारा आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य ठहरे। केवल इतना करो कि तुम्हारा आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य ठहरे। चार सुसमाचार सेवक पवित्र बाइबल के विभिन्न अनुवादों को योग्यताओं के विषय में विचार विमर्श कर रहे थे। उसमें से एक को किंग जेम्स वर्सन की बाइबल पसंद आई, क्योंकि इसकी भाषा सरल व सुंदर थी। अब दूसरे प्रचारक को अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन बाइबल पसंद आई, क्योंकि यह इब्रानी और यूनानी भाषा के लेख के समीप थी। और तीसरे प्रचारक को आधुनिक अनुवाद पसंद आया, क्योंकि वह आधुनिक अनुवाद में वर्तमान समय के शब्दों की भरपूरी को देख रहा था। परंतु चौथा प्रचारक शांत बैठा हुआ था। जब अन्य तीनों ने उसे भी अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए कहा, तो उसने कहा, मुझे मेरी माँ के द्वारा किया गया अनुवाद सबसे ज्यादा पसंद है। उसने इसका अनुवाद अपने जीवन में किया, और यह सबसे अधिक विश्वासोत्पादक अनुवाद था। इसके जैसा अनुवाद मैंने कभी नहीं देखा। हम प्रेरित पौलुस के उस वचन का स्मरण करते हैं जिसे उसने कुरिन्थ की कलीसिया के विश्वासियों को लिखा, जिसे हम दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसके तीन अध्याय और उसके दो और तीन पद में पढ़ते हैं। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री तीन अध्याय और उसके दो और तीन पद। हमारा पत्र तो तुम ही हो जो हमारे हृदय पर लिखा गया है और जिसे सब लोग जानते तथा पढ़ते हैं, तथा यह प्रकट करते हो कि मसीह का पुत्र तुम हो, जिनकी हमने देखभाल की, और जो न स्याही से न पत्थर की पटियाओं पर परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से हृदय पटल पर लिखा गया है। एक अज्ञात लेखक ने सुसमाचार के संबंध में कुछ इस प्रकार से लिखा, सुसमाचार का एक अध्याय एक दिन में लिखा जाता है, कार्य जो आप करते हैं और शब्द जो आप कहते हैं उसके द्वारा। लोग आपको पढ़ते हैं कि जो आप कह रहे हैं वह विश्वास रहित है या सत्य है। अब आप बताइए कि आपके अनुसार सुसमाचार क्या है। मित्रों, यह छोटी सी तुकबंदी सही है। सचमुच आज बाइबल के वचन का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। मेरा मानना यह है कि आज मसीहत अन्य लोगों की अपेक्षा कलीसिया के सदस्यों के द्वारा अधिक चोट खा रही है या दुखी हो रही है, और अनेक कारणों में से एक कारण यह भी है कि कलीसिया के बाहर से यह सारा विद्रोह संस्था के विरोध में है जिसमें कलीसिया भी सम्मिलित है। प्रभु की सेवकाई व उसके कार्यों में कुछ विरोध करने वालों ने अपने विरोध प्रदर्शन में कुछ इस प्रकार से लिखा है, कलीसिया नहीं यीशु हाँ, अर्थात चर्च नो जीसस यस। इसका कारण यह है कि कलीसिया में अनेक सदस्यों के जीवन लोगों को कलीसिया से दूर कर रहे हैं, अर्थात उनका जीवन मसीही संगति में बढ़ने वालों के लिए रुकावट का कारण है। किसी ने एक सज्जन से पूछा कि आप मसीही संगति में क्यों नहीं आते। उसने कहा, मुझे मसीह पसंद है परंतु मसीही लोग नहीं। काश मैं मसीहियों से पहले नहीं मिला होता तो आज मैं भी एक अच्छा मसीही होता। मित्रों, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारा व्यवहारिक जीवन दूसरों के आत्मिक उन्नति में रुकावट का कारण बन रहा है। इसलिए आज मुझे और आपको अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है। मित्रों, वास्तव में परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारी होना कितनी महत्वपूर्ण और आवश्यक बात है, ताकि लोग कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त कर सकें। अब हम बाइबल अध्ययन की रूपरेखा में और आगे बढ़ते हैं और अंतिम विषय पर विचार करते हैं। तो हमारे अंतिम बाइबल अध्ययन की रूपरेखा है, पवित्र वचन को दूसरों तक पहुंचाना। पवित्र वचन को दूसरों तक पहुंचाना। प्रिय मित्रों, पवित्र बाइबल को न केवल पढ़ना है, न केवल उसका अध्ययन करना है, और न केवल पवित्र वचन पर चिंतन और ध्यान करना है, और न केवल बाइबल संबंधी अन्य लेखकों के लेखों को पढ़ना है, परंतु पवित्र बाइबल के इस वचन को दूसरों तक पहुंचाना है। जी हाँ, यह कार्य हम सबका है जो कि पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं। यदि आप इसे दूसरों को नहीं बताएंगे तो आप अपने बाइबल अध्ययन के संतृप्त बिंदु पर पहुंच जाएंगे, और हो सकता है कि आपका मन अध्ययन में फिर न लगे। मित्रों, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बाइबल का ज्ञान कोश बनकर घूमें, जबकि अन्य लोग परमेश्वर के वचन से अनभिज्ञ हैं। मैं सोचता हूं इसलिए कि प्रभु ने ऐसा कहा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो जैसा कि कितनों की रीति है, वरन एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो, और उस दिन को निकट आते देखकर और भी अधिक इन बातों को किया करो। यह पद हम इब्रानियों के पत्री उसके 10 अध्याय और 25 पद में पाते हैं। इब्रानियों के पत्री 10 अध्याय और 25 पद। परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हम उसके गवाह बने। यह बात हमें प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसके 8 पद में मिलता है कि तुम सब मेरे गवाह ठहरोगे, तुम सब मेरे गवाह ठहरोगे। उसने हमें यह नहीं कहा कि हम सब उसके वचन के ज्ञाता या विद्वान बने, चलती फिरती डिक्शनरी या कॉमेंट्री बने या पुस्तकालय बने। उसने हमें यह भी नहीं कहा है कि हम परमेश्वर के वचन की सत्यता को कॉपी या किताबों में दफन कर दें। किसी व्यक्ति ने कहा, शिक्षा एक जीवन चक्र के समान है जो शिक्षक की कॉपी से विद्यार्थी की कॉपी में स्थानांतरित हो जाती है। बिना एक दूसरे के मस्तिष्क में से होकर गए ये सब कुछ हो जाता है। यह एक अच्छी बात है कि बाइबल की सच्चाई को भी इसी प्रकार बांटना है, अर्थात स्थानांतरित वाली बात बाइबल के लिए भी लागू होती है। दुख की बात तो यह है कि इसे व्यवहारिक रूप में नहीं लाया जाता है और न ही इसे दूसरों को बांटा जाता है। प्रभु ने मुझे और आपको आज इसलिए बुलाया है कि हम उसके गवाह बने, पवित्र बाइबल के वचन को दूसरों तक पहुंचाएं और उन्हें भी परमेश्वर के वचन की सत्यता को बताएं जो उनके जीवन में आशीषें ला सकती है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने परमेश्वर के वचन को बांटने का कार्य 18 साल पहले सीखा, जब मुझे मेरे पासवान ने परमेश्वर के वचन की सत्यता को बताया और परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया। उसी दिन मैं परमेश्वर के वचन अर्थात पवित्र बाइबल को लोगों तक पहुंचाने लगा, इस उम्मीद के साथ कि मुझे गवाह होने के लिए बुलाया गया है। और जिस प्रकार परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मेरे जीवन को बदल दिया, ठीक उसी प्रकार वह बहुतों के जीवनों को भी बदल सकता है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपके पास बाइबल सेमिनरी की अच्छी योग्यता या डिग्रियां हो और आप बाइबल वचन के अच्छे ज्ञाता हो, परंतु आप उसे अपने तक ही सीमित रखते हैं और दूसरों को नहीं बताते हैं, तो ये जान लीजिए कि आप परमेश्वर के वचन या आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि उसने कहा है, तुम सारे जगत में जाकर लोगों को बताओ, तुम सारे जगत में जाकर लोगों को बताओ। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो बाइबल के ज्ञान का होना भी व्यर्थ है। इसलिए मित्रों, आज ही यह निर्णय ले लें कि आप भी पवित्र बाइबल को अवश्य दूसरों तक पहुंचाएंगे। इस प्रकार यह 7 प्राथमिक रूपरेखाएं हैं जिनका आप अनुसरण कर सकते हैं। जब भी आप परमेश्वर के वचन को अपने हाथ में लेते हैं तो इन रूपरेखाओं को ध्यान में रखें जिसे मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहला है, प्रार्थना के साथ आरंभ करें। दूसरा, पवित्र बाइबल को पढ़ें। और तीसरा, पवित्र बाइबल का अध्ययन करें। चौथा, पवित्र बाइबल पर अध्ययन और ध्यान चिंतन करें। पांचवा, पवित्र बाइबल पर लिखी गई अन्य लेखकों की पुस्तकों को अवश्य पढ़ें। छठवां, पवित्र बाइबल के वचन का पालन करें। और सातवां और अंतिम, पवित्र बाइबल को दूसरों तक पहुंचाएं या बताएं। मित्रों, ये रूपरेखा के 7 बिंदु हैं जिसका अनुसरण मुझे और आपको करना अनिवार्य है। यह सच है कि इसका पालन करने में कठिनाई होगी, लेकिन आप प्रार्थना के साथ इसका अनुसरण करना आरंभ कर दें। आप कम से कम 3 महीने इसका पालन करके देखें तो आप देखेंगे या आप पाएंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आ गए हैं। तो आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें ताकि आप इसका अनुसरण कर सकें। हमारे जीवित प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस जीवित वचन के लिए जिसके द्वारा आपने हमें अपनी निकटता में रहने व आज्ञाकारी होने की बात सिखाई है। कृपया हम सब की सहायता करें ताकि हम सब इस रूपरेखा का अनुसरण कर सकें। और आपके प्रति आज्ञाकारी बन सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, आप हम सबकी सहायता करें ताकि हम सब वचन से अच्छी तरह सीखकर दूसरों को भी बताने पाएं। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन तमाम श्रोता भाई बहनों के लिए जो अपने जीवन में किसी रीति से दुखी और निराश हैं, और खास करके हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन में जिन्होंने इस वचन को सुना है और अपने जीवन में इस बात का निर्णय ले रहे हैं कि आज के बाद हम इस रूपरेखा का अनुसरण करेंगे। हम विनती करते हैं सामर्थ्य प्रभु, आप उनकी सहायता और मदद कीजिए, उनकी अगुवाई कीजिए ताकि वो निश्चित रूप से जो निर्णय लेते हैं अपने जीवन में लागू कर सकें। प्यार परमेश्वर, हम जानते हैं कि हम सबके लिए कठिन है, लेकिन आपके द्वारा ये सब कुछ संभव है। प्रभु, हमारी प्रार्थना है जो हमारे भाई बहन अपने जीवन में तकलीफों में और परेशानियों में होकर गुजर रहे हैं, आप अपनी शांति उन्हें प्रदान कीजिए, उन्हें सांत्वना और हिम्मत दीजिए ताकि वे इस बात को जान सकें कि आप उनके साथ में हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं, आप उनकी चिंताओं को जानते हैं, आप उनकी ज़रूरतों को समझते हैं और आप उनकी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। हम आपके हाथों में हम सभी श्रोता भाई बहनों को सौंप देते हैं और हम ये विश्वास करते हैं कि आपने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना है और आप उनकी सहायता और मदद करने के लिए आगे आ चुके हैं। प्रभु, अगले समय जब हम फिर से इस प्रकार अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं तो आप हम सबकी सहायता करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना है और ग्रहण भी किया है। प्रार्थना आपके इकलौते बेटे और हम सबके उद्धारकर्ता जो हमारे पापों के बदले में क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में जी उठा और आज भी जीवित है, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और उत्तर देता है, उसी प्रभु के सामर्थ्य नाम में इस विनती को मांगते हैं। आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।